अध्याय 23 मिस्र की महामारियां। ये अध्याय निर्गमन 5:10 पर आधारित है। स्वर्गदूत का निर्देश पाकर हारून अपने भाई से, जिससे वो बहुत लंबे समय से अलग रहा था, भेंट करने गया और वे होरेब के पास मरुधर के एकांत में मिले। यहां उन्होंने एक दूसरे से बात की और मूसा ने हारून को ये बताया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। निर्गमन 4:28। फिर वे दोनों मिस्र की यात्रा पर निकले और गोशेन पहुंचकर उन्होंने इसराइल के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थीं, वो सब बातें हारून ने उन्हें सुनाई और जो चिन्ह परमेश्वर ने मूसा को दिए थे लोगों को दिखाए गए और लोगों ने उनका विश्वास किया। और ये सुनकर कि यहोवा ने इसराइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। निर्गमन 4:3। मूसा को राजा को संदेश पहुंचाने का कार्य भी सौंपा गया था। दोनों भाइयों ने राजाओं के राजा के प्रतिनिधियों के रूप में फिरौन के महल में प्रवेश किया और फिर परमेश्वर के नाम में वे बोले, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। उनका उत्तर था, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा नहीं हो कि वो हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। उनका और उनके द्वारा लोगों में उत्पन्न अभिरुचि का समाचार राजा के पास पहुंच चुका था। उसका क्रोध भड़क उठा। उसने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। पहले ही इन परदेशियों के हस्तक्षेप के कारण राज्य को हानि उठानी पड़ी थी। ये सोचकर उसने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो? अपने दासत्व में कुछ हद तक इसराइल परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान खो चुके थे और वे उसके सिद्धांतों का त्याग कर चुके थे। सबत विश्राम दिन को आमतौर पर भुला दिया गया था और उनसे परिश्रम कराने वालों द्वारा बेगारी कराई जाने के कारण विश्राम दिन का अनुपालन असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन मूसा ने अपने लोगों को दिखाया था कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता मुक्ति की पहली शर्त थी और विश्राम दिन के अनुपालन को पुनः प्रचलन में लाने के प्रयत्न आततायियों की दृष्टि में आ चुका था। पूरी तरह से उत्तेजित राजा को संदेह था कि इसराइली उसकी सेवाओं के विरुद्ध उपद्रव का षड्यंत्र रच रहे थे। आलस्य का परिणाम विद्रोह था। वो उन्हें षड्यंत्र रचने का समय न देगा। उसने तत्काल ही उनके अनुबंध को कड़ा करने और उनकी स्वतंत्र भावना को कुचलने के उपाय अपनाए। उसी दिन आदेश दिया गया जिससे उनका परिश्रम और भी निर्दयी और दमनकारी हो गया। धूप से सुखाई हुई ईंटें उस राज्य की सबसे साधारण निर्माण सामग्री थीं। वैभवशाली भवनों की दीवारें इन्हीं से बनाई जाती थीं और उनके सामने का भाग पत्थर का होता था। ईंटों को बनाने के लिए कई दासों को काम पर लगाया जाता था। पुआल को चिकनी मिट्टी के साथ मिलाया जाता था ताकि वह जुड़ी रह सके और इसलिए इस काम के लिए बड़ी मात्रा में पुआल की आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा ने निर्देश दिया कि पुआल श्रमिकों को स्वयं ही जुटाने दी जाए, लेकिन ईंटों की गिनती में कमी नहीं होनी चाहिए। इस आदेश ने पूरे राज्य के इसराइलियों के लिए घोर कठिनाइयों को उत्पन्न किया। मिस्री अधिकारियों ने लोगों के काम का निरीक्षण करने के लिए इब्री अफसरों को नियुक्त किया गया था और ये अफसर उनके सुपुर्द लोगों के द्वारा किए गए काम के लिए उत्तरदायी होते थे। जब राजा के आदेश को लागू किया गया तो वे लोग पुआल के बदले चारा इकट्ठा करने सारे मिस्र में तितर-बितर हो गए, लेकिन उन्होंने पाया कि पहले जितना काम पूरा करना उनके लिए असंभव था। इस असफलता के लिए इब्री अफसरों को निर्दयता से पीटा जाता था।
इन अफसरों ने सोचा कि उन पर अत्याचार राजा नहीं वरन उनके ऊपर नियुक्त कठोर अधिकारी कर रहे हैं, इसलिए वे अपना दुखला लेकर फिरौन के पास गए। लेकिन फिरौन ने उनकी आपत्ति का उत्तर इस कटाक्ष के साथ दिया, तुम आलसी हो आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। उन्हें वापस जाकर काम पर लग जाने को आदेश दिया गया, इस घोषणा के साथ कि उनके कार्यभार में कोई कमी न की जाएगी। लौटकर उन्होंने मूसा और हारून से भेंट की और उनसे कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि और न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दी है। यह उलाहना सुनकर मूसा को बहुत खेद पहुंचा। लोगों के कष्टों में बहुत वृद्धि हो गई थी। पूरे राज्य के बड़े बूढ़े व नौजवान निराश होकर अपनी दुर्दशा का आरोप मूसा पर लगाने लगे। दुखित हृदय के साथ वह परमेश्वर के सम्मुख गया और बोला, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहां क्यों भेजा है? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं मिला। उसे उत्तर मिला, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा जिससे वह मेरे लोगों को जाने देगा। वह उन्हें जाने के लिए विवश करेगा। उसे फिर परमेश्वर की उसके पूर्वजों के साथ बांधी हुई वाचा का स्मरण कराया गया और उसे उस वाचा के पूरे होने का आश्वासन दिया गया। मिस्र में दासत्व के काल के इज़राइलियों में वे लोग थे जो यहोवा की आराधना करते आए थे। वे इस बात से अत्यंत दुखी थे कि उनके बच्चे प्रतिदिन उन अधर्मी मनुष्यों की घृणित वस्तुओं को देखते थे और उनके देवी देवताओं के आगे दंडवत भी करते थे। दुखी होकर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा कि वह उन्हें मिस्रियों के दमनकारी शासन से स्वतंत्र करे, ताकि वे मूर्ति पूजा के भ्रष्टाचारी प्रभाव से दूर हो सके। उन्होंने अपने विश्वास को छिपाया नहीं, वरन मिस्रियों के समक्ष घोषणा की कि उनकी आराधना का विषय आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला एकल सच्चा और जीवित परमेश्वर था। उन्होंने सृष्टि से लेकर याकूब के दिनों तक उसके सामर्थ्य और अस्तित्व में होने के प्रमाण दोहराए। इस प्रकार मिस्रियों को इब्रियों के धर्म से परिचित होने का अवसर मिला, लेकिन दासों से निर्देश प्राप्त करने को तुच्छ समझ उन्होंने परमेश्वर के उपासकों को उपहारों का लालच देकर भरमाना चाहा, और जब वे इसमें असफल रहे तो उन्हें धमकियों और निर्दयता का सहारा लेकर जीतना चाहा। इज़राइल के पुरनियों ने अपने पूर्वजों को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दोहराकर अपने इज़राइली भाइयों के डूबते विश्वास को जीवित रखने का प्रयत्न किया व उन्हें उनके छुटकारे की उस भविष्यद्वाणी का स्मरण कराया जो यूसुफ ने मृत्यु पूर्व की थी। कुछ सुनते थे और विश्वास करते थे, दूसरे अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखकर आशा भी नहीं करना चाहते थे। जब मिस्रियों को अपने दासों में किए गए प्रचार के बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने उनकी उपेक्षाओं का उपहास उड़ाया और उनके परमेश्वर की सामर्थ्य का तिरस्कारपूर्ण खंडन किया। उन्होंने इज़राइलियों की दासों का राष्ट्र जैसी परिस्थिति की ओर संकेत किया और ताना मारते हुए कहा, यदि तुम्हारा परमेश्वर भला और दयालु है और मिस्र के देवी देवताओं से अधिक शक्तिशाली है, तो वह तुम्हें एक स्वतंत्र जाति क्यों नहीं बनाता? उन्होंने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। वे इज़राइलियों द्वारा नामांकित झूठे देवी देवताओं की आराधना करते थे, लेकिन वे एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र थे। उन्होंने कहा कि उनके देवी देवताओं ने उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद दिया और दासों के तौर पर इज़राइलियों को उन्हें दिया, और वे यहोवा के भक्तों को नष्ट करने और उत्पीड़ित करने की अपनी शक्ति में गर्व का आभास करते। फिरौन स्वयं घमंड के साथ कहता था कि इब्रियों का परमेश्वर उन्हें उसके हाथ से नहीं छुड़ा सकता था। इस तरह के कथन सुनकर कई इज़राइली हताश हो गए। उनकी दशा कुछ ऐसी ही थी जैसी मिस्रियों ने बताई थी। वे यथार्थ में दास थे और उन्हें वे सब अत्याचार सहन करने थे जो उनके कठोर अधिकारी उन पर करते थे। उनके बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता था और उनका अपना जीवन बोझ से कम न था, लेकिन फिर भी वे स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। यदि यहोवा यथार्थ में उन देवी देवताओं से श्रेष्ठ था तो वह उन्हें मूर्ति पूजकों की दास्ता में नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर के प्रति निष्ठावान थे, वे यह भी जानते थे कि यह परमेश्वर ने उनके उससे दूर हो जाने के कारण उनके अधर्मी जातियों के साथ अंतरजातीय विवाह करने व मूर्ति पूजा का पथ पकड़ने के कारण परमेश्वर ने उन्हें बंधुआ बनने दिया और उन्होंने विश्वास के साथ अपने जाति भाइयों को आश्वासन दिया कि परमेश्वर जल्दी ही उन्हें दमनकारियों के शासन से मुक्त कराएगा। इब्रियों ने सोचा था वे बिना किसी कष्ट या कठिनाई उठाए या उनके विश्वास की विशेष परीक्षा के बगैर अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभी वे स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं थे। उनका परमेश्वर में विश्वास नहीं के बराबर था और वे परमेश्वर द्वारा उसके समयानुसार इसे संभव करने हेतु कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करने को सहमत न थे। कई तो एक अपरिचित देश में स्थानांतरित होने के बजाय दासत्व में रहने में संतुष्ट थे और कुछ की आदतें मिस्रियों की आदतों से इतनी मिलती जुलती हो गई थीं कि उन्होंने मिस्र में ही रहना उचित समझा। इस कारण परमेश्वर ने फिरौन के सम्मुख अपनी शक्ति के पहले प्रदर्शन के समय उन्हें स्वतंत्र न कराया। उसने फिरौन की अराजकतावादी भावना को विकसित करने और स्वयं को अपने लोगों पर प्रकट करने के उद्देश्य से कई घटनाओं का पूर्ण रूप से अनदेखा किया। उसकी न्याय संगतता, शक्ति व प्रेम को देखकर वे स्वयं मिस्र को छोड़ने का निर्णय लेकर परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होते। यदि मिस्र छोड़ने में संकोच करने की हद तक कई इसराइली भ्रष्ट न हुए होते तो मूसा का काम इतना कठिन न हुआ होता। परमेश्वर ने मूसा को लोगों के पास दोबारा जाकर छुटकारे की प्रतिज्ञा के दोहराने और उन्हें ईश्वरीय कृपा दृष्टि का फिर से आश्वासन देने को कहा। वह आज्ञानुसार लोगों के पास गया, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। पवित्र शास्त्र कहता है, इसराइलियों ने मेरी न सुनी, मन की बेचैनी और दासत्व की कठोरता के कारण। फिर से मूसा के पास ईश्वर का संदेश पहुंचा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इसराइलियों को अपने देश में से निकाल दे। हतोत्साहित मूसा ने कहा, देख, इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मेरी क्यों सुनेगा? मूसा से कहा गया कि वह हारून को लेकर फिरौन के सम्मुख जाए और फिर से उससे कह कि वह इसराइलियों को अपने देश से निकाल दे। उसे सूचित किया गया कि जब तक परमेश्वर मिस्र पर दंडाज्ञा नहीं भेजेगा और अपनी शक्ति के संकेत प्रदर्शन से इसराइल को बाहर न निकाल लेगा, तब तक फिरौन समर्पण नहीं करेगा। विपत्ति की मार से पहले मूसा को विपत्ति के स्वभाव व प्रभाव का वर्णन करना था, ताकि यदि राजा चाहे तो स्वयं को बचा ले। प्रत्येक उपेक्षित दंड के पश्चात उससे भी कठोर विपत्ति को आना था, जब तक कि फिरौन का अहंकारी हृदय दीन न हो जाए और वह धरती और आकाश के सृजनहार को सच्चा और जीवित परमेश्वर न मान ले। परमेश्वर मिस्रियों को एक अवसर देना चाहता था कि वे अपने प्रबल महापुरुषों की बुद्धिमानी के व्यर्थ होने का व अपने देवी देवताओं की शक्ति की निर्बलता का आभास कर सके, विशेषकर तब जब यह यहोवा की आज्ञाओं के विरुद्ध हो। वह मिस्र के लोगों को मूर्ति पूजा के लिए दंड देना चाहता था और निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त आशीर्वाद के उनके दावे का खंडन करना चाहता था, ताकि दूसरी जातियां उसकी शक्ति व सामर्थ्य के बारे में सुने और उसके चमत्कारी महान कार्यों को देखकर कंपकपाएं और उसके लोग मूर्ति पूजा से हटकर उसकी सच्ची आराधना करें।
मूसा और हारून ने दोबारा राजा के वैभवशाली महल में प्रवेश किया। वहां चमचमाते आभूषणों और ऊंचे-ऊंचे स्तंभों, आकर्षक चित्रकला की कृतियों व अधर्मी देवी देवताओं की गढ़ी हुई मूर्तियों से घिरे हुए दासत्व के शिकार वंश के दो प्रतिनिधि इसराइल के छुटकारे के लिए परमेश्वर की आज्ञा को दोहराने उस समय के विद्यमान सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के सम्राट के सम्मुख खड़े हुए। राजा ने उनके ईश्वरीय कार्यभार के प्रमाण के रूप में चमत्कार की मांग की। ऐसी मांग पर प्रतिक्रिया के संबंध में मूसा और हारून को निर्देश दिया गया था और हारून ने लाठी को पकड़कर फिरौन के सामने फेंक दिया। लाठी तुरंत सर्प बन गई। सम्राट ने अपने बुद्धिजीवियों व तांत्रिकों को बुलवाया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को नीचे डाला और वे सर्प बन गईं। लेकिन हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को निगल लिया। पहले से भी अधिक संकल्प के साथ राजा ने अपने जादूगरों को शक्ति में मूसा और हारून के तुल्य घोषित किया। उसने परमेश्वर के दासों को बहरूपिया बताया और स्वयं को उनकी मांगों का प्रतिरोध करके सुरक्षित महसूस किया। लेकिन फिर भी उनके संदेश से घृणा करते हुए भी ईश्वरीय शक्ति ने उन्हें हानि पहुंचाने से रोक रखा। वह मूसा और हारून में निहित शक्ति या कोई मानवीय प्रभाव नहीं, वरन परमेश्वर का हाथ था जिसने उनके माध्यम से फिरौन के सम्मुख वे चमत्कार दिखाए। इन चिन्हों और चमत्कारों का प्रयोजन फिरौन को यह विश्वास दिलाने के लिए किया गया कि मूसा को उस महान मैं हूं ने भेजा था, और यह कि राजा का ये कर्तव्य था कि वो इसराइलियों को देश में जाने दे ताकि वे जीवित परमेश्वर की उपासना कर सके। जादूगरों ने भी चिन्ह और चमत्कार दिखाए, पर वह केवल उनके कौशल से नहीं वरन उनके देवता शैतान की शक्ति से, जिसने यहोवा के कार्यों के प्रतिरूप दिखाने में उनकी सहायता की थी। जादूगरों ने अपनी लाठियों को यथार्थ में सर्प तो नहीं बनाया, लेकिन महान कपटी शैतान की सहायता से सर्प का प्रतिरूप उत्पन्न किया। जीवित सर्पों को लाठी में परिवर्तित करना शैतान की शक्ति से बाहर था। बुराई के राजकुमार के पास एक पतित स्वर्गदूत का ज्ञान और शक्ति तो थे, लेकिन जीवन देने या लेने का उसे अधिकार नहीं है। ये विशेषाधिकार केवल परमेश्वर का है। लेकिन जो भी शैतान के बस में था उसने किया, उसने एक प्रतिरूप उत्पन्न किया। मनुष्य की दृष्टि में लाठियां सर्प में परिवर्तित हो गईं। ऐसा फिरौन और उसके दरबारियों का विश्वास था। उनकी आकृति में ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें मूसा द्वारा उत्पन्न किए गए सर्प से भिन्न बताए। हालांकि परमेश्वर ने मूसा के सर्पों को कृत्रिम सर्पों को निगलने दिया, लेकिन इस घटना को फिरौन ने परमेश्वर के सामर्थ्य का कार्य नहीं वरन अपने जादूगरों की जादूगरी से श्रेष्ठ जादूगरी का परिणाम माना। पवित्र आज्ञा का प्रतिरोध करने में फिरौन अपने हठीलेपन को सही ठहराना चाहता था, और इस कारण वो मूसा के माध्यम से किए गए परमेश्वर के चमत्कारों को उपेक्षित ठहराने के बहाने ढूंढ रहा था। शैतान ने उसे वही दिया जो उसे चाहिए था। जादूगरों के माध्यम से कराए गए काम से उसने मिस्रियों को ये जताया कि मूसा और हारून केवल जादूगर और तांत्रिक थे, और उनके द्वारा लाया गया संदेश एक श्रेष्ठतर हस्ती के पास से आने वाले संदेश के समान माननीय होने का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार शैतान द्वारा उत्पन्न प्रतिरूप ने मिस्रियों को उनके अतिक्रमण में प्रबल करने और विश्वास के विरुद्ध फिरौन के हृदय कठोर करने के उद्देश्य को प्राप्त किया। शैतान मूसा और हारून के इस विश्वास को तोड़ना चाहता था कि उनको दिए गए विशेष कार्य का स्रोत ईश्वरीय है, ताकि वो अपने साधनों को सफल कर सकें। वो इसके पक्ष में नहीं था कि इसराइलियों को जीवित परमेश्वर की उपासना करने के लिए दासत्व से मुक्ति दी जाए। लेकिन जादूगरों के माध्यम से अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करने में बुराई के राजकुमार का और भी बड़ा लक्ष्य था। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसराइल के लोगों को दासत्व के बंधन से छुड़ाने में मूसा मसीह का आदि रूप था, वो मसीह जिसे मानव परिवार पर पाप के शासन का अंत करना था। उसे ज्ञात था कि मसीह के आगमन पर संसार के समक्ष प्रमाण के तौर पर कई चमत्कार घटित कराए जाएंगे कि मसीह को परमेश्वर द्वारा भेजा गया है। मूसा के द्वारा किए गए कृत्य का प्रतिरूप दिखाकर शैतान न केवल इसराइल की मुक्ति में बाधा उत्पन्न करना चाहता है, आने वाले युगों के लिए ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहता था कि लोगों का मसीह के चमत्कारों पर से विश्वास समाप्त हो जाए। शैतान मसीह के काम का प्रतिरूप उत्पन्न करने और अपने आधिपत्य और शासन को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। वो मनुष्य से मसीह के चमत्कारों का वर्णन इस प्रकार करवाता है कि वे मनुष्य के कौशल और सामर्थ्य का परिणाम प्रतीत होता है। कई लोगों के मन में वो मसीह के परमेश्वर का पुत्र होने के विश्वास को नष्ट कर देता है, और उन्हें उद्धार की योजना द्वारा दया के प्रस्ताव को अस्वीकार करा देता है। मूसा और हारून को दूसरे दिन की प्रातः ही नदी के किनारे जाने का निर्देश दिया गया, जहां राजा प्रतिदिन आने का अभ्यस्त था। मिस्र के लिए नील नदी का अतिप्रवाह खाद्य सामग्री और धन संपत्ति का स्रोत था, और इस कारण नील नदी को पूजनीय माना जाता था, और राजा वहां प्रतिदिन श्रद्धांजलि अर्पित करने आता था। यहां दोनों भाइयों ने संदेश को फिर से दोहराया, और उन्होंने लाठी को उठाकर जल पर मारा। नदी का सारा जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थीं वे मर गईं, और नदी से दुर्गंध आने लगी। घरों का पानी, टंकियों में रखा हुआ पानी भी लहू में परिवर्तित हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया और फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर कर घर चला गया। 7 दिनों तक ये विपत्ति कायम रही लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर से नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी वाला हाथ बढ़ाया गया और नदी में से मेंढक बाहर निकलकर पूरे मिस्र में फैल गए। उन्होंने घरों पर आक्रमण कर शयन कक्षों, भट्टे और आटा गूंधने वाली थालियों पर भी धावा बोल दिया। मेंढक को मिस्री लोग पूज्य मानते थे, इसलिए वे उसे नष्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे चिपचिपे जीव अब असहनीय हो गए थे। वे फिरौन के महल में भी भर गए और फिरौन उनके निवारण के लिए उतावला हो गया। जादूगर मेंढकों को उत्पन्न करने के लिए तो आए थे लेकिन वे उन्हें हटा न सके। ये देखकर फिरौन थोड़ा सा दीन हुआ। उसने हारून और मूसा को बुलाया और उनसे कहा, यहोवा से विनती करो कि वो मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करें और मैं इसराइली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। राजा को उसी की ढींग मार बातों का स्मरण कराकर मूसा व हारून ने एक समय नियुक्त करने को कहा, जब वे मेंढकों को दूर करने की विनती कर सकते थे। फिरौन ने अगला दिन निर्धारित किया इस गुप्त आशा के साथ कि तब तक मेंढक स्वयं ही विलोप हो जाएंगे और वो इसराइल के परमेश्वर के आगे समर्पण करने के घोर अपमान से बच जाएगा। लेकिन मेंढकों का आक्रमण नियमित समय तक चलता रहा और फिर जब सारे मिस्र में मेंढक मर गए तो उनके दुर्गंधित शवों ने वातावरण को दूषित कर दिया। परमेश्वर उन्हें क्षण भर में मिट्टी में मिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मेंढकों को इस तरह हटाए जाने के बाद राजा और उसकी प्रजा इसे जादूगरी या तंत्र मंत्र का परिणाम बताते। मेंढक मर गए और उन्हें इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए गए। इसमें राजा और संपूर्ण मिस्र के लिए ये प्रमाण था, जिसके लिए उनकी व्यर्थ तर्कशास्त्र की विद्या भी यही कह सकती थी कि यह कार्य जादू से संपन्न नहीं हुआ, वरन वो स्वर्ग के परमेश्वर की दंडाज्ञा थी। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब उसने फिर अपने मन को कठोर कर लिया। परमेश्वर की आज्ञानुसार हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाया और भूमि की धूल पर मारा और सर्वत्र धूल जुए बन गई। फिरौन ने जादूगरों को वैसा ही करने को बुलाया लेकिन वे जुए न बना सके। इस तरह परमेश्वर का काम शैतान के काम से श्रेष्ठतर प्रमाणित हुआ। जादूगरों ने स्वयं स्वीकार किया, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है, लेकिन फिरौन का मन कठोर होता गया। विनती व चेतावनी दोनों प्रभावहीन रहीं और एक और दंडाज्ञा दी गई। उसके घटित होने का समय पहले से ही बता दिया गया ताकि ऐसा न कहा जाए कि इस विपत्ति का आना आकस्मिक था। घर मक्खियों से भर गए और भूमि पर मक्खियों के झुंड उतर आए और मक्खियों के कारण वो देश नष्ट हुआ। ये मक्खियां बड़ी और विषैली थीं। इनका काटना मनुष्य व जंतु दोनों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। भविष्यद्वाणी के अनुसार ये विपत्ति गोशेन देश तक नहीं पहुंची। अब फिरौन ने इसराइलियों को मिस्र में बलिदान करने की अनुमति का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। ऐसा करना उचित नहीं, मूसा ने कहा, क्या हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करेंगे? तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? बलिदान के लिए जिन जानवरों की इब्रियों को आवश्यकता थी, वे मिस्रियों द्वारा पूजनीय माने जाते थे और इन जंतुओं को इतने भक्तिभाव से देखा जाता था कि इन्हें संयोगवश मारना भी वो अपराध था जिसके लिए मृत्युदंड मिल सकता था। अपने स्वामियों को ठेस पहुंचाए बिना इब्रियों के लिए मिस्र में उपासना करना असंभव था। मूसा ने फिर से जंगल में 3 दिन की यात्रा का प्रस्ताव रखा। सम्राट सहमत हो गया और उसने परमेश्वर के दासों से विनती की कि वे विपत्ति हटाए जाने के लिए उनके निमित्त विनती करें। उन्होंने ऐसा करने का वचन दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वो उनके साथ छल न करें। विपत्ति को स्थगित कर दिया गया, किंतु लगातार विद्रोह करने के कारण उसका हृदय कठोर हो गया था और वो समर्पण करने को तैयार नहीं था। तत्पश्चात उससे भी अधिक भयानक विपत्ति आई, मैदानों के सभी पशुओं पर मरी। पूजनीय पशु व भारवाहक पशु, गाय, बैल, भेड़े, घोड़े, ऊंट व गधे सब नष्ट हो गए। ये स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इब्रियों पर विपत्ति न आएगी, और इसराइलियों के घरों पर संदेशवाहकों को भेजकर फिरौन ने मूसा की घोषणा की सच्चाई को प्रमाणित किया। इसराइलियों का एक भी पशु नहीं मरा, फिर भी फिरौन हठपूर्वक अड़ा रहा। इसके बाद मूसा को भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख लेकर फिरौन के सामने आकाश की ओर जड़ा देने को कहा गया। ये कृत्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। 400 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अब्राहम को एक जलते हुए दीपक और धुएंदार भट्ठी के आकार के नीचे अपने लोगों के भविष्य में होने वाले अत्याचार को दिखाया था। उसने अत्याचारियों पर दंडाज्ञा की और बंधकों को बहुत से धन के साथ लाने की घोषणा की थी। मिस्र में इसराइल ने यातना की भट्ठी में बहुत लंबा समय काटा था। मूसा का ये कृत्य उनके लिए आश्वासन था कि परमेश्वर को अपनी वाचा का ध्यान है और उनकी मुक्ति का समय आ गया था। जैसे जैसे राख आकाश की ओर बिखेरी गईं, उसके सूक्ष्म कण पूरे मिस्र देश में फैल गए, और जहां पर भी वो गिरी, मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गईं। पुजारियों और जादूगरों ने अब तक फिरौन को उसकी हठधर्मिता में प्रोत्साहन दिया था, लेकिन अब दंडाज्ञा उन तक भी पहुंच गईं। पीड़ादायक और घृणास्पद बीमारी से ग्रसित वे इसराइल के परमेश्वर के विरुद्ध नहीं लड़ सके, और उनकी दिखावटी योग्यता ने उन्हें और भी तुच्छ बना दिया। जब वे अपने ही शरीर की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो पूरे राष्ट्र को जादूगरों पर विश्वास करने की मूर्खता को दिखाया गया। लेकिन फिर भी फिरौन का हृदय और भी कठोर हो गया, और अब परमेश्वर ने उसके पास ये संदेश भेजा। अब के बाद मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब तरह की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। परंतु सचमुच में मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर उसे इसी उद्देश्य से अस्तित्व में लाया था, वरन उसी के प्रयोजन से कई घटनाओं का अनदेखा किया गया, ताकि इसराइल की मुक्ति के नियुक्त समय में उसे सिंहासन पर बैठाया जाए। हालांकि इस अहंकारी सम्राट ने अपने अपराधों के कारण परमेश्वर की दया का पात्र नहीं रहा था, लेकिन उसका जीवन इसलिए संरक्षित रखा गया ताकि उसके हठीलेपन के माध्यम से परमेश्वर मिस्र देश में अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करे। घटनाओं को सुव्यवस्थित करना परमेश्वर का कार्य था। वो सिंहासन पर एक करुणामयी राजा को बैठा सकता था, जो ईश्वरीय शक्ति के प्रबल प्रदर्शनों का प्रतिरोध करने का दुस्साहस न करता, लेकिन उस दशा में परमेश्वर की योजनाएं सफल न होती। उसके लोगों को मिस्रियों की अत्यंत कष्टदायक निर्दयता का अनुभव करने दिया गया, ताकि वे मूर्ति पूजा के दुष्प्रभाव के संबंध में धोखा न खाएं। फिरौन के साथ अपने व्यवहार में परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के लिए उसकी घृणा और उत्पीड़न और निर्दयता को दंडित करने के संकल्प को प्रकट किया। फिरौन के संबंध में परमेश्वर ने घोषणा की थी, मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा और वो लोगों को जाने न देगा। निर्गमन 4:21। राजा के हृदय को कठोर करने के लिए किसी अति प्राकृत शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। परमेश्वर ने फिरौन को ईश्वरे को ईश्वरीय शक्ति के ठोस प्रमाण दिए, लेकिन सम्राट ने प्रकाश पर ध्यान देने से मना कर दिया। अनंत शक्ति का प्रत्येक प्रदर्शन जिसकी उसने उपेक्षा की, उसे उसके अतिक्रमण में और दृढ़ बनाता गया। पहले चमत्कार को अस्वीकृत करके जो विद्रोह का बीज उसने बोए थे, उन्होंने अपनी पहली उपज उत्पन्न की। जैसे जैसे वो अपने ही रास्ते पर चलता रहा और अपने हठीलेपन में बढ़ता गया, उसका हृदय कठोर होता चला गया, और अंत में उसे पहलौठों के ठंडे पड़े निर्जीव चेहरों को देखना पड़ा। परमेश्वर पाप को धिक्कारते हुए वो चेतावनियां देते हुए अपने दासों द्वारा मनुष्य से बात करता है। वो हर एक को गलती सुधारने का अवसर देता है, इससे पहले कि वो गलती उसके चरित्र का हिस्सा बन जाए। लेकिन यदि कोई सुधार होने देने से मना ही करता है, तो पवित्र सामर्थ उसके अपने कृत्य की प्रवृत्ति का प्रतिरोध करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। फिरौन को एक ही बात को दोहराना आसान लगा, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध अपने हृदय को कठोर कर रहा था। प्रकाश की और उपेक्षा ने उसे वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां पहले से अधिक गहरा प्रभाव भी एक स्थायी संस्करण छोड़ने में निष्प्रभाव होता। जो एक बार प्रलोभन में पड़ जाते हैं वे दूसरी बार और तत्परता से प्रलोभन में पड़ जाएंगे। पाप का प्रत्येक दोहराव उसमें प्रतिरोध की शक्ति को कम कर देता है, उसे अंधा कर देता है और विश्वास का गला घोंट देता है। अति भोग का प्रत्येक बोया हुआ बीज फलवंत होगा। परमेश्वर उपज को बाधित करने के लिए कोई चमत्कार नहीं करता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो विधर्मी साहस और पवित्र सत्य के प्रति उदासीनता प्रकट करता है वो उसी की उपज काट रहा है जो उसने स्वयं बोई है। इस प्रकार कई लोग एक समय में उनकी आत्माओं को झकझोर कर रख देने वाले सत्यों को उदासीन उपेक्षा के साथ सुनने आते हैं। उन्होंने सत्य के प्रति उपेक्षा और प्रतिरोध का बीजारोपण किया और ऐसी ही वो फसल है जो वे काटते हैं। जो इस विचार से अपराध बोध से ग्रसित अंतरात्मा को शांत करने का प्रयत्न करते हैं कि वे जब चाहें पाप के रास्ते को बदल सकते हैं और दया के निमंत्रण को तुच्छ समझ सकते हैं और फिर भी बार बार प्रभावित हो सकते हैं, वे ये रास्ता अपने आप को संकट में डालकर चुनते हैं। वे सोचते हैं अपना सारा प्रभाव महान विद्रोही के पक्ष में डालने के बाद परम संकट के क्षणों में जब वे खतरों से घिरे होंगे वे सरदार बदल लेंगे। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता। पापमय अतिभोगग्रस्त जीवन का अभ्यास, शिक्षण व अनुभव उनके चरित्र को पूर्ण रूप से ढाल देते हैं कि फिर वे यीशु की छवि को ग्रहण नहीं सकते हैं। यदि उनके मार्ग में प्रकाश का अभाव होता तो बात कुछ और होती। दया ने हस्तक्षेप कर उन्हें उसके प्रस्तावों को स्वीकार करने का अवसर दिया होता। लेकिन जब प्रकाश को बहुत समय तक अस्वीकार व तिरस्कृत किया जाता है तो उसे हटा लिया जाएगा। आने वाली अगली विपत्ति, ओलों की वर्षा की चेतावनी फिरौन को दी गई। अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा न किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। वर्षा या ओले दोनों ही मिस्र में अस्वाभाविक थे और ऐसा तूफान जैसा भविष्यवाणी में बताया गया था कभी नहीं देखा गया था। ये सूचना शीघ्रता से फैल गई और जिन्हें परमेश्वर के कथन पर विश्वास था उन्होंने अपने पशुओं को इकट्ठा कर लिया, लेकिन जिन्होंने चेतावनी का तिरस्कार किया उन्होंने अपने पशुओं को मैदान में ही छोड़ दिया। इस प्रकार न्याय करने के दौरान भी परमेश्वर की दयालुता का प्रदर्शन हुआ। लोगों को परखा गया और ये बताया गया कि उसके सामर्थ्य के प्रदर्शन से कितनों को परमेश्वर का भय मानने के लिए प्रेरित किया गया। तूफान वैसे ही आया जैसा कि बताया गया था, मेघ गर्जन और ओले और उसके साथ आग मिली हुई, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी नहीं गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों, क्या मनुष्य क्या पशु, जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के वृक्ष भी नष्ट हो गए। जहां से भी विनाश का स्वर्गदूत निकला वहां बर्बादी और निर्जनता के चिन्ह छोड़ गया। केवल गोशेन प्रदेश को छोड़ दिया गया। मिस्रियों को उदाहरण देकर समझाया गया कि पृथ्वी जीवित परमेश्वर के नियंत्रण में है, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करने में ही सुरक्षा है। पवित्र दंडाज्ञा के उंडेले जाने पर पूरा मिस्र कांप उठा। फिरौन ने तुरंत दोनों भाइयों को बुलाया और उसने कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया, अब यहोवा से विनती करो तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। मूसा ने उत्तर दिया, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और फिर ओले न गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा की ही है। तो भी मैं जानता हूं कि न तो तू
और न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। मूसा को ज्ञात था कि संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। फिरौन के वचन और पापों का अंगीकार करना उसके मन या हृदय में सुधारवादी परिवर्तन का प्रभाव नहीं थे, वरन उसके भय और यंत्रणा से उत्पन्न हुए थे। लेकिन मूसा ने उसका निवेदन स्वीकार करने का वचन दिया, क्योंकि उसे और हठीला होने का अवसर नहीं देना चाहता था। तूफान की प्रचंडता पर ध्यान देते हुए नबी चल पड़ा, और फिरौन और उसके लोग परमेश्वर की अपने दूत को संरक्षित रखने के सामर्थ्य के साक्षी थे। नगर से बाहर जाकर उसने यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादलों का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और पृथ्वी पर अधिक वर्षा न हुई। लेकिन जैसे ही फिरौन भयमुक्त हुआ, उसका हृदय फिर से हठी हो गया।
परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैंने ही उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, जिससे तुम लोग ये जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन इसलिए कर रहा था कि इज़राइल अपने विश्वास की पुष्टि कर सके कि वो ही एकल सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो उनमें और मिस्रियों के बीच अंतर का ठोस प्रमाण देने वाला था और सब जातियों को ये बताने वाला था कि इब्री, जिनसे वे इतनी घृणा और जिन पर इतना अत्याचार करते थे, वे स्वर्ग के परमेश्वर की सुरक्षा में थे। मूसा ने सम्राट को चेतावनी दी कि यदि वो अभी भी हठधर्मी बना रहेगा तो टिड्डियों की विपत्ति भेजी जाएगी, जो संपूर्ण पृथ्वी पर छा जाएगी, और ओलों की मार से प्रत्येक हरी वस्तु जो बची हुई है को खा जाएंगी। वे सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी और महल में भी, और इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादा ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। फिरौन के परामर्शदाता हक्का बक्का रह गए। अपने पशुओं के मरने से मिस्र को बहुत हानि पहुंचती थी। ओलों की मार से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न ही खेत में अनाज रह गया था। इब्रियों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया था, वे उसे शीघ्रता से गवा रहे थे। पूरे मिस्र पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा था। राजकुमारों और दरबारियों ने आग्रहपूर्वक क्रोध में ये मांग की, वो जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन लोगों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? मूसा और हारून को फिर से बुलवाया गया और फिरौन ने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत, वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके साथ जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। राजा क्रोध से भर गया, यहोवा तुम्हारे संग रहे यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं। देखो, तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन की उपस्थिति से निकाल दिए गए। फिरौन ने इसराइलियों से कठोर परिश्रम करवाकर उनका विनाश करने का प्रयत्न किया था, लेकिन अब वो उनके छोटे छोटे बच्चों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार और उनके कल्याण में गहरी रुचि दिखाने की चेष्टा कर रहा था। उसका वास्तविक उद्देश्य था कि वो स्त्रियों और बच्चों को जाने वाले पुरुषों की जमानत के तौर पर रखे। मूसा ने अब मिस्र की भूमि पर अपनी लाठी वाला हाथ बढ़ाया और पूरब दिशा से एक हवा चली और अपने साथ टिड्डियों को ले आई। टिड्डियों का दल बहुत भारी था, न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थीं और न उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। वे सारी धरती पर छा गईं, यहां तक कि देश में अंधकार छा गया और बची हुई प्रत्येक हरित वस्तु को खा गईं। फिरौन ने शीघ्र ही नबी को बुलाकर कहा, मैं तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराधी हूं, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वो मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा टिड्डियों को लाल समुद्र की ओर उड़ा कर ले गईं। लेकिन फिरौन अपने हठपूर्ण संकल्प पर डटा रहा। मिस्र के लोग निराशा की ओर बढ़ रहे थे। उन पर आई विपत्तियां असहनीय प्रतीत हो रही थीं
और वे भविष्य को लेकर भयभीत हो गए थे। राष्ट्र ने फिरौन को उनके देव के प्रतिनिधि के रूप में पूजा था, लेकिन अब कईयों को विश्वास हो गया था कि वो उसके विरुद्ध खड़ा था जिसने प्रकृति की प्रत्येक शक्ति को अपनी इच्छा का कर्मकर बनाया था। इब्री दास, जिन पर परमेश्वर की आश्चर्यजनक कृपा दृष्टि थी, अपने छुटकारे के लिए आश्वस्त थे। अब से उनके कठोर अधिकारी उन पर पहले जैसा अत्याचार नहीं करते थे। संपूर्ण मिस्र दासों पर किए गए अत्याचारों के कारण उनके प्रतिशोध की आशंका से व्याप्त था। हर तरफ भयभीत मनुष्य के होठों पर एक ही प्रश्न था, अब क्या होने वाला है। अकस्मात ही पूरे देश पर अंधकार छा गया, जो इतना घोर व प्रगाढ़ था कि उसे टटोला जा सकता था। न केवल लोग प्रकाश से वंचित हो गए, वरन संपूर्ण वातावरण इतना दम घोंटू हो गया कि श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। 3 दिनों तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इज़राइलियों के घरों में उजियाला था। सूर्य और चंद्रमा मिस्रियों के लिए पूजा के पात्र थे। इस रहस्यमयी अंधकार में दासों की मुक्ति का दायित्व लेने वाली शक्ति द्वारा मनुष्य और उनके देवी देवता एक समान मारे गए। फिर भी, भयानक होते हुए भी, ये दंडाज्ञा परमेश्वर की संवेदना और उसकी नष्ट न करने की इच्छा का प्रमाण है। अंतिम और सबसे भयानक विपत्ति से पहले वो लोगों को प्रायश्चित और चिंतन का समय देना चाहता था। डर से प्रभावित होकर फिरौन ने एक और अनुदान दिया। अंधकार के 3रे दिन उसने मूसा को बुलाया और लोगों की निकासी की सहमति इस प्रतिबंध के साथ दी कि वे अपने पशु पीछे छोड़ जाएं। दृढ़ संकल्प के साथ इब्री ने कहा, उनका एक खुर तक न रहेगा। जब तक हम वहां नहीं पहुंचे, तब तक हम नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। राजा का क्रोध आपे से बाहर हो गया। वो बोला, मेरे सामने से चला जा और सचेत रहे, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाएगा, उसी दिन तू मारा जाएगा। मां ने कहा, तूने ठीक कहा है, तेरे मुंह को फिर कभी ना देखूंगा। वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। मिस्रियों के द्वारा मूसा का श्रद्धायुक्त भय के साथ आदर किया जाता था। राजा उसे हानि पहुंचाने का दुस्साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि लोगों की दृष्टि में केवल मूसा ही विपत्तियों को दूर करने के योग्य था। वे चाहते थे कि इसराइलियों को मिस्र छोड़कर जाने दिया जाए। वे राजा और पुजारी ही थे जो अंत तक मूसा की मांगों का विरोध करते रहे।